शांति अभी हमारे बीच आदरणीय जयंती दीदी हम सभी को ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए उपस्थित हैं, तो हम सभी करतल ध्वनि से दीदी का स्वागत करेंगे। आप इंदौर जोन की वरिष्ठ दीदियों में से हैं और जुरिस्ट विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। पिछले 35 वर्षों से यज्ञ में समर्पित रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं और वर्तमान समय आप इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर सेवा में उपस्थित हैं। तो हम सबको ज्ञान रत्नों से भरपूर करेंगी आदरणीय जयंती दीदी।
ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे, संसार से गिने चुने हुए वो अमूल्य रत्न है जिसे भगवान ने खुद चुना है। ऐसे अमूल्य रत्न हम हैं, हमें अपने ऊपर सबसे पहले निश्चय होना चाहिए कि हम वास्तव में कौन हैं। जैसे शास्त्रों में कहा हुआ है कि भगवान असुरों को नष्ट करने के लिए संसार में आते हैं, और भगवान का ये वायदा भी है कि जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ और आकर अधर्म को नाश करके धर्म की स्थापना करता हूँ। तो वो अपना वायदा निभाने धरती पर आ चुके हैं, और शास्त्रों में ये भी कहा हुआ है कि जब भगवान आए थे तो वो अकेले नहीं आए थे, लेकिन गुप्त वेश में उनके सभी साथी उनको सहयोग देने के लिए आए थे। सभी को मालूम होगा रामायण में जितने भी पात्र हैं, चाहे वो बंदर है या भालू है या कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति है, सभी के लिए जो परिचय दिया हुआ है कि सभी कोई ना कोई देवताओं के अंश थे। जैसे हनुमान के लिए कहा हुआ है वो पवन का पुत्र था, ऐसे सुग्रीव के लिए कहा हुआ है, ऐसे अंगद के लिए कहा हुआ है, सभी किसी न किसी देवताओं के अंश थे। उसी प्रकार हम सबको भी नहीं मालूम था, लेकिन जब बाबा आए तो बाबा ने हमें पहचान दिया कि बच्चे तुम वही मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हो जो देवी देवताओं के रूप में थे और आज सामान्य रूप में आ चुके हो, और तुम खुद ही अपने आप को भूल चुके हो। जैसे हनुमान भी अपने आप को भूल चुका था कि वो सबसे शक्तिशाली है, उसी तरह हम सब भी अपने आप को संपूर्ण रूप से भूल चुके हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। और बाबा आकर हम बच्चों को वो पहचान दे रहे हैं कि तुम मेरे वही बच्चे हो। तो हमको तो सबसे पहले इस बात का नाज होना चाहिए कि हम कौन हैं। तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि तुम इस समय ऐसा पुरुषार्थ करो जिस पुरुषार्थ से तुम दूसरों के लिए प्रेरणा दे सको। इसीलिए बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा है कि अब तुम अपने स्थान पर जाओ और जा करके अपने दिव्य गुण युक्त चेहरे से, अपने चलन से ये साबित कर दो कि तुम जितने खुश नसीब हो उतना खुशी तुम बांट सकते हो, और तुम जो भी उन्हें कहोगे उन्हें तुमसे खुशी ही मिले। तुम ये सेवा सब दूर जाकर करो। तो बाबा अपने मुरली में, अव्यक्त मुरली में, जो बाबा इस प्रकार की बातें, इस बार सिर्फ एक ही मुरली नहीं लेकिन करीब करीब सभी मुरलियों का सार यही है कि बच्चे तुम्हारे अंदर वो चीज अब झलकना चाहिए कि तुम्हारे जैसा असाधारण व्यक्तित्व संसार में कोई भी नहीं है। तो हम सबको भी इस बात का सबसे पहले निश्चय और सबसे पहले नाज होना चाहिए कि हम कौन हैं। और जब अपने को इस बात का महसूस होने लगता है कि हम सबसे ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं, तो हमारा पुरुषार्थ कैसा होता है? दूसरों की देखा देखी आम लोगों की तरह हम अपना चाल चलन नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है हम इनसे श्रेष्ठ हैं और हम इनसे ऊंचे हैं। हमारा कुल ऊंचा है, हम साधारण नहीं बल्कि हम सूर्यवंशी हैं। तो ये सब बातें इस बात को एहसास दिलाती है कि हम अब अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना ले। लेकिन ये सब बातें कब हो सकता है? जब हमको ये भी मालूम हो कि कहने वाला कौन है और वो हमसे क्या चाहता है और हम क्यों ऐसा पुरुषार्थ करें। तो भगवान ने हमें ये बात महसूस कराया कि तुम वो देवी देवताएं हो, और अब ये बात भी महसूस करा रहे हैं कि तुम्हें अब इस धरती को बदलना है। और इस धरती को बदलने के लिए सिर्फ बाबा ही नहीं, लेकिन बाबा को अपने बच्चों का सहयोग चाहिए। और हम जब बाबा को सहयोग देंगे तो बाबा की मदद हम बच्चों को मिलेगी। तो हमें ये बात भी मालूम होना चाहिए कि जिस भगवान को सारा संसार ढूंढ रहा है वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है। और पिता माना हम उनके बच्चे हैं और हम हकदार हैं। संसार भक्ति करता है, पूजा करता है, भगवान के लिए वो झुकता है, नमन करता है, वंदन करता है, लेकिन हम क्या करेंगे? अधिकारी बच्चे हैं। और अधिकारी बच्चे हैं तो बाप की आज्ञा तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा ना। तो बाबा ने आकर हम बच्चों को आज्ञा दी है कि बच्चे तुम योगी बनो, पवित्र बनो। योगी अर्थात परमात्मा के साथ हमारा साथ, सदा के लिए साथ, जिसको कनेक्शन भी कह सकते हैं। योग माना ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाए, आंखें बंद कर दें। संसार में योगी तो उसको कहते हैं। इसीलिए कई बार जब किसी को बाबा का परिचय देने जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि माफ करना, अभी तो हमें घर परिवार संभालना है। वो क्या समझते हैं कि भगवान का ध्यान करना माना घर बार छोड़ दो, जंगल में जाकर बैठ जाओ। लेकिन शिव बाबा हम बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वो सबसे अलग, वो जो बातें कहते हैं वो सामान्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल है समझना। इसीलिए देखो महाभारत ने भी बताया कि लड़ाई के क्षेत्र में जब अर्जुन गया हुआ था तो भगवान ने उसको ज्ञान सुनाया। वो मोह से ग्रसित होकर लड़ाई करना छोड़ दिया तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया। ज्ञान दिया लेकिन उसके बाद उसके अंदर अनेक प्रश्न उठते रहे, एक के बाद एक प्रश्न पूछता ही रहा। और वो हर प्रश्न का उत्तर बड़े प्यार से देता रहा और उसको बार बार समझाता रहा कि हे अर्जुन, अब तुम युद्ध करो, इसीलिए तुम्हें धर्म के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए लड़ना ही है। बार बार उसको समझाता लेकिन बार बार वो मोह ग्रसित हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि उसको ये पहचान नहीं थी कि कहने वाला कौन है। और जब विश्व रूप का दर्शन कर लिया उसको समझ में आ गया कि हाँ, ये जो कह रहे हैं इसी बात को हमें मानना है, तब उसको ज्ञान भी स्पष्ट हो गया। नहीं तो ज्ञान सुनते हैं, संसार में ज्ञान का अभाव नहीं है, अनेक बातें लोग कहते हैं लेकिन ज्ञान सुनाने वाले के ऊपर वो निश्चय नहीं होने के कारण उनके लिए वो पुरुषार्थ करना मुश्किल हो जाता है। और हम बच्चों के लिए वो पुरुषार्थ करना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने पहचान लिया और हमने उसके साथ संबंध जोड़ लिया कि वो भगवान कौन है जिसे सारा संसार ढूंढता है। और सभी ये चाहते हैं कि हमारे पास अब वो शक्ति हो और जिस शक्ति के आधार से हम संसार का सब काम कर सके। आज संसार में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कार्य के लिए व्यक्ति बहुत उलझा हुआ है। हर एक के पास कोई ना कोई प्रकार की समस्याएं हैं। चाहे आप छोटे बच्चों को देखो, चाहे युवा वर्ग को देखो, चाहे उससे ऊपर गृहस्थी को देखो, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति देखो, तो आपको हर एक में ये मिलेगा कि सभी परेशान हैं, अपने अपने स्थान पर सभी परेशान हैं और सभी उलझे हुए हैं और सभी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अपने कार्य को कर नहीं पाते हैं, जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। इसीलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हमारे पिता कौन हैं, और अब हम बच्चों को इस बात की पूर्ण जानकारी मिल चुकी है कि हम कौन हैं और हमें करना क्या है। हम वो कार्य नहीं कर सकते जो सामान्य मनुष्य करते हैं, इसीलिए हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में, हमारे हर बातों में संसार के प्रत्येक व्यक्ति से अलग दिखना चाहिए। और बाबा हम बच्चों में वो सारी चीजें भरते जा रहे हैं और बाबा उसके लिए कोई हम बच्चों से मेहनत नहीं लेता। दुनिया में लोग क्या समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए भक्ति, पूजा, उपवास, अनेक प्रकार के कठिन कठिन से कठिन वो अपनी साधना करते हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ कहा मुझे याद करो। लेकिन वो याद ऐसा याद कि जिस याद से हमारे अंदर के सारे विकार भस्म हो जाए, वो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाओ, लेकिन है बहुत सहज। और जिसको ये सहज बात महसूस हो चुका है वो अपने कार्य में आगे बढ़ता जा रहा है और उसको हर बात में सफलता भी मिलती जा रही है। लेकिन जिसने इस बात को पकड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, उसके लिए आज भी ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा बाबा भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि उनके अंदर अभी इस बात का संपूर्ण निश्चय नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। अगर आत्मा रूप से अपने आप को नहीं महसूस कर पाए तो अपने अंदर के जो विकार हैं वो भी निकलेंगे नहीं, क्योंकि जब तक आत्मा का भान नहीं तब तक विकार है ही है। देह का भान है तो अनेक प्रकार के गलत संकल्प भी होंगे और गलत कर्म भी होंगे। देह भान के आधार से हमारे पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारी बातें हैं। लेकिन जैसे ही बाबा ने हम बच्चों को बताया तुम एक आत्मा हो और ये शरीर तुम्हारा मंदिर है, या ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है, ये शरीर एक गाड़ी है जिसे तुम आत्मा ही चला रहे हो, जब तक इस बात को महसूस नहीं किया, कितनी सिंपल बात है। कहने को सभी कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा चली जाती है, परंतु इसको अनुभव नहीं कर पाते। और बाबा ने हम बच्चों को ये बात कह करके अनुभव कराया और जिसको ये अनुभव हुआ उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। एक बार मैं एक सेंटर पर थी, वहां पर एक भाई आया है, वो एक अच्छा भाई था, अच्छा वो ऑफिसर था। वो आया, उसने कोर्स किया, 7 दिन तक कोर्स करने के बाद उसने कहा कि दीदी मैं अपने बॉस को भी लाऊंगा, और वो बॉस जो बहुत ज्यादा शराबी है और बहुत अपने घर में उसको कोई मान सम्मान भी नहीं है, लेकिन वो मेरा बॉस है और वो एक बड़ा ऑफिसर भी है, वो खुद भी ऑफिसर लेकिन उससे भी बड़ा तो होता ही है ना, लेकिन वो मेरे से भी बड़ा ऑफिसर है। अब जो भी है, तो हम जैसे उसको ज्ञान सुनाते थे तो हमारे लिए ऑफिसर हो और कोई एक सब्जी वाला हो और चाहे कोई कैसा भी हो, हम तो सभी को आत्मा के रूप से देखते हैं। तो उसने अब मुझे ऐसा कहा, मैंने कहा ठीक है, तो बोले मैं उनको उसको लाऊंगा। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, तो वो कैसे आएगा, वो आपकी बात मानेगा क्या? तो बोले नहीं, उसने खुद मेरे को कहा, मैं तो उसको मनवाने नहीं गया था, लेकिन वो खुद मेरे से आकर के बोला। मैंने कहा क्यों, किस बात पर? तो बोले दीदी मैं है ना चेन स्मोकर हूं, मैंने कहा चेन स्मोकर किसको कहते हैं? तो बोला कि चेन स्मोकर माना जो स्मोक करता है ना, सिगरेट पीता है, तो वो ऐसा सिगरेट पीता है कि जब चाय पीनी होती है तो सिगरेट को यहां कर लेता, चाय पिएगा फिर उसको सामने करके फिर पिएगा, माना वो छोड़ता नहीं। बोले जब मैं सोने जाता था तो मेरे मुंह से सिगरेट बाहर होता था, नहीं तो जब से मैं उठता हूं तब से लेकर सोते तक मेरे मुंह में ये चीज रहती है। तो बोले कि जैसे ही मैं पहले दिन यहां आया और आपने मुझे ये बताया कि तुम एक चैतन्य आत्मा हो और तुम देवता हो, और तुम आत्मा तुम देवता इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हो, तो जब मंदिर है तो मंदिर को तो कितना शुद्ध रखना है, लोग मंदिरों में भी कोई अशुद्ध चीज लेकर नहीं जाते, तो हमें भी अपने मंदिर में कोई भी अशुद्ध चीज नहीं देनी है, क्योंकि आत्मा जो है वो तो एक ज्योति है, वो एक प्रकाश है, और वो जो ज्योति है वो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तो बोला कि दीदी आपने जो ये बात बताई मेरे अंदर वो बात बैठ गई और मैं अपने आप को जैसे एक प्रकाश स्वरूप देखने लगा। तो मैं वो कोर्स करके पहले ही दिन जब मैं घर गया तो जो चीज मैं लिया करता था, यहां आया था तो मैं नहीं लिया था, लेकिन जब मैं घर गया तो सारी चीजों को मैं उठाकर फेंक दिया, और उसके बाद से 7 दिन तक मैंने न छुआ और न मुझे कभी याद आया। तो मैं जब दूसरे दिन ऑफिस गया तो ऑफिस में जब जाता था और अपने टेबल पर बैठता था तो मेरा सबसे पहले सिगार मेरे मुंह में होता था, लेकिन उस दिन मेरे मुंह में वो चीज नहीं था, तो चपरासी सबसे पहले देखकर आश्चर्य किया, वो मेरे पास खड़ा मुझे देखता रहा। मैंने उसको कहा तुम क्या देख रहे हो, कुछ बोलना है? तो बोला नहीं नहीं सर, नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना है, चला गया। उसके बाद फिर दूसरा एक व्यक्ति आया, वो भी मुझे देखा, क्योंकि मैं बिगर सिगार का उस दिन बैठा था, तो बोले वो देख करके वो भी आश्चर्य हो गया, वो भी देखा और वो भी चला गया। तो बोले ऐसे, बोले फिर मेरा एक मित्र आया, वो आकर के बैठा, वो बोला क्यों भाई आज कुछ बदले हुए नजर आ रहे हो? बोले कि उस दिन ऐसी बात हुई। फिर मित्र ने कहा आज तुम्हारे मुंह में वो सिगार कहाँ है? तो उसको मैंने कहा अब मैं नहीं लेता हूँ, मुझे अब उस चीज से घृणा हो गई है। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात तुमने सुनाई, फिर तुम कुछ पार्टी देना, जब इतनी बात अच्छी बात कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में तो बहुत अच्छा ही आ जाएगी। तो मित्र ये कहकर तो चला गया। इसके बाद धीरे धीरे चपरासी वगैरह ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा था, मित्र था तो उसने बात छेड़ दिया और बात बाहर निकल गई। उसके बाद दूसरों को पता चलने लगा कि ये तो अब सिगार लेता ही नहीं है। तो बोले 7वां दिन आज मेरा कंप्लीट हुआ, और आज जब मैं उस बॉस से मिला, मतलब सुबह सुबह आता था कोर्स करने, आज जब मैं उस बॉस से, वो बॉस से मैं मिला नहीं, उसने मुझे खुद बुलाया और उसने बोला कि कुशवाहा जी आप अचानक इतने चेंज कैसे हो गए? तो मैंने उससे कहा किस बात की चेंज आपको दिख रही मेरे में, मैं तो वही हूँ, मैं सारा काम कर रहा हूँ, अपने टाइम पर आता हूँ, टाइम पर काम करता हूँ, किस बात की चेंजेस दिखाई दे रही है? तो उसने कहा कि नहीं वो जो आपकी एक आदत थी ना, आप जो ऐसे सिगार पीते थे तो वो क्या हुआ? तो उसने बोला सर वो चीज मेरा छूट गया, अब वो चीज मैं नहीं लेता हूँ, मुझे उससे बिल्कुल घृणा हो चुकी है। तो बोले क्यों, कैसे, ऐसा कैसे हुआ? तब फिर उसने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मैं वहां पर गया और मुझे जब ये बात महसूस हुआ और दीदी ने मुझे योग कराया तो मुझे बिल्कुल महसूस हुआ कि मैं एक ज्योति हूँ, एक प्रकाश हूँ, और मैं, मेरा ये जो शरीर है ये एक मंदिर है और इस मंदिर को मुझे शुद्ध रखना है। उस घड़ी जब मैं घर गया और मैंने सब चीज फेंक दिया तो बोले सर मेरा ऑफिसर उठ करके खड़ा हो गया और मेरा हाथ पकड़ के बोला मुझे भी ले चलो। तो कितनी वंडरफुल बात है, बाबा ने इतना सहज ज्ञान दिया, लेकिन ये जिसने अनुभव किया उसका तो जीवन ही बदल गया। तो इस प्रकार बाबा हम बच्चों को जो बातें बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल जीवन में लागू करने के लिए, कई बार क्या होता है हम सुनते हैं लेकिन जीवन में लागू नहीं करते, और जब उसको जीवन में हम अमल में नहीं लाते हैं तो फिर हमें कुछ भी महसूसता नहीं होती है। लेकिन महसूस तब होगी जब हम कुछ करेंगे, और जब कुछ करेंगे तो जैसे कहा हुआ है कि हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा, उसी तरह से हमें भगवान की मदद मिलती है, क्योंकि हमने किया तो भगवान उसके लिए हमें मदद देता है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कई बातें बता रहे हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें पवित्र बनना है, तुम पवित्र देवी देवताएं हो और तुम्हें वापस बनना है, तुम भूल चुके हो। और हम पवित्र कैसे बनते हैं, जब हमें इस बात की महसूसता हो जाती है मैं एक आत्मा हूँ। तो आत्मा अपने देह भान में आ ही नहीं सकती, आत्मा कभी भी देह से आकर्षित हो ही नहीं सकती, क्योंकि देह है मिट्टी, आत्मा है प्रकाश। तो जो एक ज्योति है प्रकाश है वो मिट्टी से कैसे संलग्न होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम तो हीरा हो, डायमंड हो, जैसे डायमंड हीरा को कुछ छिपा नहीं रख सकता, महसूस कर लेती है, तो आत्मा भी देह भान से अलग न्यारी प्यारी दिखाई देती है। और बाबा इसलिए हम बच्चों को कई बार कहते हैं तुम चैतन्य मणि हो, मस्तक मणि हो। और बाबा कई बात में हम बच्चों को महसूस कराते हैं कि जब आत्मिक स्वरूप में होते हैं तो हमारे पास वो सारी शक्तियां जो देवी देवताओं के लिए बताते हैं कि जैसा वो सोचते वैसा वो होता है। और ये बात तो आप सब भी प्रैक्टिकल महसूस करते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। कई बार जैसे आप देखते हैं कई बार सेवा में कुछ भी घटना दुर्घटना होती है या कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो वहां हम लोग आपस में क्या चर्चा करते हैं, बाबा को याद करो सब ठीक हो जाएगा। क्या ये झूठी बात है? ये झूठी बात है, बाबा को याद करो सब ठीक हो जाएगा, होता तो है ना, झूठी तो नहीं है। कई बार कईयों को महसूस नहीं होता है, उसका कारण कई बार कईयों को लगता है हम तो इतना बाबा को याद करते हैं, इतना मैं योग लगाती हूँ, इतना तो मैं ज्ञान की मुरली सुनती हूँ, लेकिन पता नहीं सब लोग कहते हैं ऐसा सोचो ऐसा करो तो वो हो जाएगा। तो वो क्या झूठी थी वो बातें कि बाबा को याद करने से नहीं भी होता है, ऐसा है? आप लोगों को क्या महसूस होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि बाबा को याद करें और हमारा काम पूरा नहीं हो? वास्तव में हमारी असफलता का कारण हमारी खुद की कमजोरी है, क्योंकि हम उस एकाग्रता को अपने अंदर लाते नहीं है। एकाग्रता को आप लोग यूं समझो, जैसे साइंस ने बताया हुआ है कि साइंटिस्ट किसी कागज को जलाने के लिए धूप के नीचे एक लेंस रखते हैं और धूप की पूरी किरणों को लेंस पर क्या करते हैं, एकत्रित कर देते हैं। तो धूप की किरणें तो बिखरी हुई थी, है तो गर्म वो भी था लेकिन वो सारी किरणें बिखरी हुई थी, लेकिन जब वो एक जगह पर आकर केंद्रित हो गई और नीचे कागज रख दिया गया तो धूप से वो कागज जल गई। और हम भी ऐसा किसी भी कार्य को कर सकते हैं अगर हमारे पास वो एकाग्रता की शक्ति हो। हम जो संकल्प करते हैं वो संकल्प हमारे बिखरे बिखरे होते हैं, कई बार संकल्प हम करते हैं कभी अच्छा भी करते हैं, वो संकल्प हमारा बिखर जाता है। जैसे अभी अभी हम कहेंगे कि बाबा को याद करते हैं, चले हम अपने परम धाम, मन में सोच लिया कि अब चलते हैं अपने घर, और घर जाते जाते बीच में क्या याद आ गया, अरे फलाने से इसी टाइम पर मिलना था, याद आया, फिर हम कहें हाँ हाँ अभी तो बाबा से योग लगा ले, फिर ऊपर चल, अरे अरे टाइम कहीं आज कल का दिन हो गया तो वो नहीं मिला, तो काम बहुत इम्पोर्टेंट था थोड़ी सी संकल्प और चली गई, बाहर बाहर हो गया। जो हम निश्चित करके बैठे थे उससे हम अलग हट गए। तो अब क्या हुआ, हमारा संकल्प जब बिखर गया तो हमारा मन शांत नहीं हुआ, और मन शांत नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, उठो चलो चलो, काम पहले करो फिर योग लगा लेंगे। तो क्या हमारा काम सफल होगा? वहां पर कई बार लगता है कि हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, हम उस बाबा को याद करने की वो जो विधि हमने अपनाई थी और सोचा था इस कार्य को पहले करेंगे, बाबा को याद कर लें, लेकिन वो कार्य भी रह गया, बाबा की याद भी रहेगी, और जिस कार्य के लिए हम हड़बड़ा के जाने लग गए वो कार्य भी बीच में कोई और कारण अकारण वो भी नहीं हुआ। फिर हम क्या कहते, न इधर के हुए न उधर के हुए। तो वास्तव में जो हम कई बार असफल हो जाते हैं, कई बार आप देखोगे ऐसा नहीं है, अपने इस विश्वविद्यालय का एक भी भाई या बहन चाहे लास्ट हो, कोई भी ये नहीं कहेगा कि बाबा मिला और मैं दुखी हूं। ये कहेंगे कि हाँ बाबा तो हमारा बहुत मानता है, बहुत सुनता है, बाबा बहुत करता है, बहुत करवाता है, बाबा बहुत अच्छा है, कहेंगे। लेकिन हमेशा सफलता क्यों नहीं मिलती, उसका कारण यही है, बीच में से हम इधर उधर हो जाते, हमारे संकल्प बिखर जाते, और संकल्प बिखर गए तो हमारी शक्ति भी खत्म हो गई, हमारी जो आत्मिक शक्ति है वो खत्म हो गई, और आत्मिक शक्ति खत्म होकर देह की शक्ति में आई। फिर हम क्या कहते हैं कि अरे ये काम जो है फलाना कर देगा, तब हम व्यक्ति को याद करते हैं, फलाना कर देगा, उसकी बड़ी अच्छी पहुंच है, वो ये भी कर देगा वो भी कर देगा, तो बाबा हमारा कहां चला गया, बाबा एक किनारे रह गया, हम अपने देह के भान में, देह अभिमान में और देह के संबंधियों को लेकर फिर से चलना शुरू कर दिए। तो फिर हम जहां थे वहीं आ गए। हाँ ज्ञान में जाते क्योंकि बाबा बहुत अच्छा है, बाबा बहुत मीठा है, बाबा के पास बैठते हैं शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, लेकिन वो शांति और शक्ति को हम खुद यूज नहीं कर पाते हैं। उसका कारण सिर्फ एकाग्रता की शक्ति की कमी, और जब तक हम एकाग्र नहीं होते हैं तब तक हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आती। जैसे इस बात का आभास हो जाए कि मैं वास्तव में कौन हूं, तो हमारी शक्ति ऑटोमेटिक हम ही को महसूस होगा कि हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति आई, और ऐसा लगेगा कि जैसे हमसे कोई भी टकराए लेकिन हम इससे भी ऊंचा है, हमारी शक्ति इसको भी जवाब दे देगी। जैसे हनुमान को क्या लगता था, अरे ये सब क्या है, मैं एक मिनट में गिरा दूंगा, और उसके अंदर इतनी शक्ति का आभास होता था। तो ये सारी शक्तियां हमारे पास हैं, पर वो जो हनुमान की शक्ति दिखाया दुनिया में वो बाहुबल दिखाया, लेकिन वास्तव में है ये आत्मा का बल, आत्मिक शक्ति। यहां कोई बाहुबल की शक्ति नहीं है, और आत्मा की शक्ति है संकल्प। बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ बनने के लिए एक ही उपाय बताया कि तुम अपने को आत्मा समझो, तो हम ये सोचें कि मैं कौन हूं। और आप लोग भी इस बात को महसूस करते होंगे कि जितना हम संकल्प को ध्यान देते, और संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है, अगर संकल्प को हम ठीक रख करके चलते हैं, संकल्प को हम अनुभव करते हैं और अपने संकल्प को श्रेष्ठ बनाते हैं, समर्थ बनाते हैं, तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन हम अपने संकल्पों को ही खत्म कर देते हैं, और बाबा ने सिर्फ एक संकल्प दिया, सोचो मैं एक आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा है, एक ही संकल्प। अगर इस संकल्प को हम अनुभव में लाते जाएं तो हमारे पास हमारे दिव्य गुण ऑटोमेटिक हमारे पास आने लगेंगे। और आप सबको भी महसूस है, जैसे ही आप अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, सबसे पहले शांति, एकदम शांति। आप देखेंगे प्रैक्टिकल अपना भी ये विश्वविद्यालय है, दुनिया में भी अनेक विद्यालय हैं, लेकिन वहां विद्यालय में टीचर को कितनी बार कहना पड़ता है, बच्चे शांत हो जाओ, शांत होकर बैठो, और अपने यहाँ बाबा कभी कहता है? बाबा कभी आया और बाबा ने कहा बच्चे शांत हो जाओ, मुरली सुनो? बाबा ने कभी ऐसा कहा? शांति से बैठो? बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि आत्मा है ही शांत स्वरूप। और आत्मा का जब परमात्मा से मिलन हो रहा है तो अपने आप ऑटोमेटिक उसके अंदर शांति आती ही जा रही है। उसको शांत रहने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, वो है ही शांत। प्रैक्टिकल में वो शांत है, उसमें चंचलता है ही नहीं, क्योंकि चंचलता देह का भान। और जब हम है ही नहीं देह, हम तो आत्मा है और हम अपने पिता को याद कर रहे हैं, तो हम शांत हैं। तो सिर्फ एक संकल्प ही हमारे अंदर सारे ही गुण, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, सुख, खुशी सबसे भरपूर कर देता है। सिर्फ एक ही संकल्प, और हम सब संकल्प को ध्यान नहीं देते हैं। कुछ भी सोचा करते हैं, आलतू फालतू भी सोचा करते हैं, अनावश्यक भी सोचा करते हैं। तो हमें फालतू तो संकल्प करना ही नहीं है। जिसका हमारे किसी भी कार्य से कोई रिलेशन नहीं है, वो संकल्प तो हमको करना ही नहीं है। और अनावश्यक जो हमारे काम के लिए नहीं, अभी कभी कर लेंगे, वो भी हमें अभी नहीं करना है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, यही संकल्प करना है। और इस संकल्प को अगर हम ध्यान दें तो हमारे अंदर वो पावर आता ही चला जाएगा। दुनिया में लोग कहते हैं टेंशन है। टेंशन क्या चीज है? कहां से टेंशन आया? संकल्प, विचार। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्योंकि अनेक प्रकार के विचार उठ रहे हैं और वो विचार जो है उन्हें डामाडोल कर रहे हैं, क्योंकि वो उन संकल्पों में। और आप देखोगे जब हम निगेटिव सोचते हैं या आलतू फालतू सोचते हैं, तो आलतू फालतू सोच ये क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। अभी अभी ये सोचेंगे, अभी अभी ये सोचेंगे, अभी अभी ये सोचेंगे। लेकिन जो समर्थ और शक्तिशाली संकल्प होता है वो एक संकल्प पर चलता है। सिर्फ हमारा मन जो है वो भागा दौड़ी कर रहा है। कभी कभी अपने आप को जांच करें तो महसूस होगा कि हम बैठे तो हैं बाबा की याद में, लेकिन हम बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। कभी हम किसी से मिलने चले जा रहे हैं, कभी हम घर में चले जा रहे हैं, कुछ खाने की इच्छा हो गई है, कभी कुछ काम याद आ गया है, हम वहां पहुंच गए। आपको लगेगा जैसे बंदर यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां ऐसे उछल कूद करता है, ऐसे हमारा मन एक चंचल बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है। बैठे हम यहां है और थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, अरे योग नहीं लग रहा है, चलो उठो। या ये ध्यान देंगे घड़ी में कितना बज रहा है, सफेद लाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम खुद उछल कूद कर रहे हैं, मन उछल रहा है, लेकिन शरीर को हमने शांति से बिठा दिया। और योग क्या है? योग में हमारा मन, चित, शरीर सब कुछ शांत होना चाहिए, तब योग लगेगा। और तब वो पावर की महसूसता हमारे अंदर होगी। और जब पावर की महसूसता होगी तो हम जो कर्म करेंगे वो कर्म भी बहुत अच्छा होगा और वो कर्म श्रेष्ठ होगा। और उस कर्म का रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो है सफलता। हम सफल इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम इन सब बातों में चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति कहता है ना टेंशन है, टेंशन माना उसने अपने संकल्पों को कंट्रोल नहीं किया और कंट्रोल करना नहीं आता। इसलिए उनको इस बात का अभ्यास कराना जरूरी है कि तुम सिर्फ एक ही बात सोचो। उनको अच्छे अच्छे संकल्प देकर के बिठाना चाहिए। और कई बार हम लोग ऐसे, जैसे कई लोग कहते हैं ना टेंशन है टेंशन है, तो उनको पहले हम बिठा देते हैं कि आप इस बात को सोचो, अभी कुछ और बात नहीं सोचो, इस बात को सोचो। और थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे उसको संकल्प दे दिया। नहीं, ये नहीं सोचो, आप सोचो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूं। तीनों कालों को जानते हो, आप अपने आप को क्यों सोच रहे हो मैं नीच हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आप ऐसा नहीं सोचो, आप सोचो मैं मास्टर सर्वज्ञ हूँ। ऐसी ऐसी सोच दो। तो कई बार ऐसे देखते हैं कोई बहुत ऐसा डिस्टर्ब, और आजकल अपने पास आते ही ऐसे लोग हैं, कहते नींद नहीं आ रही, मैंने बहुत गोली खाई, और अब हमें कुछ ऐसी चीज दे दो, डॉक्टर ने कहा तुम जाकर के मेडिटेशन करो, तो हम मैं तो सिर्फ मेडिटेशन के लिए आया हूँ। तो उनको मेडिटेशन क्या बताएंगे, क्योंकि आत्मा नहीं जानते, परमात्मा नहीं जानते, उनको सिर्फ संकल्प देते हैं कि आप इस प्रकार का चिंतन करो। थोड़ी देर बाद उनको खुद रिलैक्स फील होता है, उनको कहते हैं आप सोचो नहीं, आप ऐसे हो, आप बहुत अच्छे हो, अरे आप तो हनुमान के समान शक्तिशाली हो, आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो, आप सोचो मैं हनुमान के समान हूँ। ऐसे ऐसे संकल्प देते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो आजकल इस प्रकार के लोग आते हैं, ज्यादा नहीं चलते हैं, ज्ञान में भी नहीं चलते, आ गए, कुछ डोज मिल गया, खुश हो गए, चले गए, फिर कुछ समय के बाद फिर चले आते हैं, अरे वो क्या हुआ, समय नहीं मिला इसलिए नहीं आ पाया, पर उस दिन बहुत अच्छा लगा था, ऐसे ही हमको कुछ और दे दो। तो ऐसे मांगने वाले आजकल मिलते हैं, ज्ञान योग में नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ उनको कुछ बाबा की भासना होगी, कुछ बहनों से मिलने की इच्छा होगी, कुछ ध्यान करने की इच्छा होगी, तो ऐसे चले आते हैं। तो आजकल समय ऐसा आ गया है, लोग बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, और ऐसे दुख और अशांति के समय हमें अपने स्टॉक को इतना भर लेना है, और वो स्टॉक भरने का आधार है हमारा संकल्प। जो बाबा कहता है वो हम करते जाएं, जो बाबा कहता है वो हम करते जाएं। और बाबा ने इस बार की मुरली में, आप देखिए इस बार की मुरली, ऐसा लगता है जैसे बाबा अपना कार्य पूरा करके अब जाने वाला है, क्योंकि बाबा ने इस बार किसी को भी ऐसा कोई होमवर्क नहीं दिया कि बच्चे 3 मास के लिए ये करके दिखाओ, बाबा ने नहीं दिया। इस बार बाबा आज तक, अभी तक, इस बार बाबा क्या कहेंगे वो तो हम सब सुनेंगे, लास्ट मुरली बाबा की क्या होगी, परंतु अभी तक बाबा ने सिर्फ ये कहा बच्चे सबको खुश करो, खुशी बांटो, तुम संतुष्ट मणि बनकर संतुष्टता की शक्ति से सबको संतुष्ट करो। दुनिया में लोग बहुत असंतुष्ट हैं, सबको खुश करो, खुशी दो, खुशी बांटो, बस बाबा ने यही कहा। और ये भी बाबा ने अंडरलाइन करवाया कि बच्चे खुश तो हैं लेकिन कभी कभी, और बाबा को ये कभी कभी शब्द पसंद नहीं है। तो इस बार बाबा बस यही बात कहते गए, अभी तक की हर मुरली में आप देखो बाबा ने एक ही शब्द को विशेष लिया है, खुश रहो, खुशी बांटो। और बाबा नहीं चाहता है कि बच्चे अब कहे कि व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ को विदाई दे दो, व्यर्थ को बिल्कुल नहीं रखो अपने पास, सिर्फ जो बाबा कहता है वो करो, और बाबा का कहना यही है बस, और कुछ भी नहीं। तो इतना आसान बाबा सिखा रहे हैं, लेकिन उन सब चीजों को हम लें और यूज करें तो बहुत मजा आएगा, लेकिन हम यूज करते नहीं हैं, और वो हमको करना है। अभी तक करने के लिए वो जैसे नेचर नहीं बना है, क्योंकि हम आज तक जैसा चलते आए वैसा ही चलते आए, संकल्प भी कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हम कर रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, लेकिन अब बाबा हम बच्चों को जैसे पक्का कर रहे हैं कि बच्चे अब ऐसा नहीं, ये समय जा रहा है, कलयुग जा रहा है, नया युग आ रहा है, नए युग के लिए तैयार हो जाओ, दूसरों को भी तैयार करो, क्योंकि अब अंत समय हमें इसी रूप से चलना पड़ेगा, क्योंकि अंत समय अगर हम इसी आत्मिक शक्ति को लेकर, आत्मा के भान को लेकर नहीं चलेंगे तो आगे हम सफल नहीं हो पाएंगे। ये भी बाबा ने इस बार कहा है कि आगे चल करके आपको इसका अभ्यास बहुत करना होगा, इसलिए अभी से ही अभ्यास करो, आगे चलकर इसकी आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है आगे चल करके, कि हम अशरीरी बन जाएं एक सेकंड में, क्योंकि समय है घर जाने का, तो कोई बोल करके जाना नहीं होगा, अचानक जाना होगा, लेकिन अचानक जाने में अगर हमारे पास वो अभ्यास नहीं होगा तो हम एकदम से अशरीरी नहीं बन पाएंगे। जैसे कहा हुआ है ना, कोई चीज टाइट है जो बहुत समय से हम टाइट करके रखे हुए हैं, हमारा स्वभाव संस्कार अगर टाइट है तो जब जाने का समय होगा वो हमको जाने नहीं देगा और उस समय क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे हम। इसीलिए बाबा कहते कि आप पूरे दिन में पांच पांच मिनट, हर घंटे में पांच पांच मिनट ये अभ्यास करो अशरीरी भाव का, और ये इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना अब हम सभी ब्राह्मणों का कर्तव्य है। इसलिए बाबा कहते हाफ कास्ट नहीं, फुल कास्ट ब्राह्मण बनो, बाबा का सुनो, बाबा का करो, नहीं तो माया कच्चा ही खा जाएगी। जो बाबा की नहीं सुनते, बाबा की नहीं करते, तो उन्हें माया खा ही जाती है। तो इस रीति से चलने से हमें सफलता पूर्णतः मिलेगी, और अगर इस रीति से हम नहीं चल पाते हैं तो वहां हम खुद ही दुखी होते हैं। तो बाबा के बच्चे अगर दुखी हो तो जो हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हम बदलेंगे, विश्व को भी बदल कर रखेंगे, तो ये संकल्प हम कब पूरा करेंगे। इसीलिए बाबा की ये शिक्षा हमें अपने जीवन में उतार कर दूसरों को भी ऐसा ही बना लेना है। तो ऐसा बनने के लिए हम सब तैयार हो रहे हैं ना? इस विश्वविद्यालय की खूबी ही यह है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं। सारा संसार श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन अपने चरित्र को कोई ने ध्यान नहीं दिया। श्रेष्ठ तो वहां भी बन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ले रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोर्सेस चल रहे हैं दुनिया में भी, लेकिन अंदर से सभी खाली हैं। और बाबा ने हम बच्चों का अंदर भरपूर कर दिया है, हम खुद बन रहे हैं, दूसरों को बना रहे हैं। दुनिया में भले बन जाएगा लेकिन दूसरों को बना नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर भरपूरता नहीं है। और आजकल की पढ़ाई तो आप सभी जानते हैं कैसे पास हो जाते हैं, और बाबा हम बच्चों को कहते हैं यहाँ ऐसा पास नहीं होंगे, यहाँ तो अपने आप को ही ठीक करना होगा, दूसरे को नहीं लेकिन अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तो हम सब बाबा की शिक्षा को अमल में ला करके धीरे धीरे श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं अति गुप्त रीति से, और जिसे कोई भी नहीं जानता तो हमको भी बहुत नाज होता है अपने आप के लिए सोचकर और अपने ब्राह्मण परिवार के लिए सोचकर कि ये 33 करोड़ देवी देवताएं कितने गुप्त रीति से और कितना छिपा हुआ रुस्तम होकर चल रहे हैं। जैसे भगवान के लिए कहा हुआ है ना कि सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, तो बाबा के बच्चे भी गुप्त रीति से इतने ऊंच श्रेष्ठ देवी देवताएं अपने आप को चला रहे हैं और अनेकों का जीवन भी बना रहे हैं। ओम शांति।